अब जैसे ही नानी माँ ने आस्था को सारी बातें बताने के लिए बोला, तभी मनोज जी मना करते हुए बोले थे, नहीं नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आस्था को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, और उसकी ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ कम हैं जो हम और परेशानी पैदा करें? तभी माँ ने कहा था, ठीक है बेटा, हम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब जैसे ही ये सारी बातें हो रही थी, ठीक उसी वक्त आहान, ध्रुव और साथ ही साथ सुमित तीनों ही ये बातें सुन चुके थे। एंजल और अविनाश उस समय वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि रश्मि का बेटा आने वाला था और इसलिए वे रश्मि और उसके बेटे के लिए अच्छे से अच्छे प्रेजेंट लेकर आना चाहते थे, तो दोनों ही शॉपिंग के लिए निकल गए थे और अबीर उन्हें ज्वाइन करने वाला था। वहीं दूसरी ओर रायचंद विला में इस वक्त वसुंधरा बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी थी। वीर तुरंत घुटनों के बल बैठकर वसुंधरा के पास आया और बोला था, माँ, हमारा घर परिवार सब कुछ मिल चुका है, मगर पता नहीं क्यों दिल में एक खालीपन सा आ गया है। परिवार के साथ रहने की आदत हो चुकी है, अब उन सबकी मुझे बहुत याद आ रही है। तभी वसुंधरा नम आंखों से बोली थी, मुझे भी आज सबकी बहुत याद आ रही है, और स्पेशली अंश की। इस वक्त वो मेरे साथ खेलता था, ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ ही बिताता था। पता नहीं अब वो क्या कर रहा होगा। इस बात से बेखबर कि रौनक ने पहले ही प्रिंस को उसके पास ढेर सारे बैलून लाकर दे दिए थे और वो उनसे मज़े से खेलते खेलते हंस रहा था। फिलहाल वीर ने तुरंत ही वसुंधरा का हाथ थामा और बोला था, माँ, अगर हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। चलो ना, चलते हैं, हम यहाँ से वापस चले जाते हैं, और मैं दादाजी से कह दूंगा कि उनका उनके बिना बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, और फिर वहाँ पापा भी तो हैं। जैसे ही उनके बेटे ने ये कहा, वसुंधरा जी ने तुरंत वीर के माथे को चूमकर कहा था, बेटा, हमसे इतनी सारी गलतियां हुई हैं कि कोई इतनी आसानी से हमें माफ़ नहीं करेगा। बस एक बार हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लें, हमें पूरी उम्मीद है कि उसके बाद हमें हमारा परिवार पूरी तरह से वापस मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहते हुए वसुंधरा पूरी तरह से रो पड़ी थी। दोनों के दिल में पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे शाम हो चली थी और जल्दी ही अब रश्मि को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने के साथ साथ एम्बुलेंस के द्वारा सिंघानिया मेंशन के लिए लेकर जाना था, तो सारी तैयारियां हो चुकी थीं। आस्था और अरमान दोनों ही एक साथ थे और अरमान ने एक पल के लिए भी आस्था का हाथ नहीं छोड़ा था। जल्दी ही वे हो घर के लिए निकल चुके थे। घर पर उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी थी और जैसे ही वे लोग गाड़ी में बैठे, अरमान और आस्था एक साथ थे, साथ ही साथ आकाश भी था। आस्था ने बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ था, जबकि आकाश नन्हे बच्चे को गोद में लिए रश्मि के साथ बैठा हुआ था। आस्था ने रौनक और बाकी सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि वे लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो सभी को पूरी तैयारी करने के लिए कह दिया गया। घर में खुशी का माहौल था, हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था। प्रियंका भी धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही थी ताकि वो अपने दिल के दर्द को थोड़ा कम कर सके। वहीं आहान ने तो ढोल वाले भी बुला लिए थे ताकि अच्छे से सेलिब्रेशन हो सके, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ। नानी माँ ने तो गीतों का भी प्रोग्राम रखवा दिया था कि नन्हा बालक घर आ रहा है तो मंगल गीत तो गाए ही जाएंगे। उन्होंने अपनी भाषा में अलग अलग तरह के मंगल गीत गाने शुरू कर दिए थे और इस भजन में सब उनका पूरा साथ दे रहे थे। राधिका और वंशिका हर एक मोमेंट का वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाते हुए कभी नानी माँ के गीतों पर हंस पड़ती तो कभी मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे उन गीतों के शब्द समझ नहीं आ रहे थे कि आखिरकार नानी माँ कौन से गीत गा रही हैं। आखिरकार रौनक से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो नानी माँ के पास जाकर बोला था, नानी माँ, आप क्या कर रही हैं? ये किस तरह के गाने गा रही हैं? ये गाने तो मैंने आज तक नहीं सुने। तभी नानी माँ बड़े प्यार से बोली थी, बेटा, ये मंगल गीत हैं जो किसी शुभ अवसर पर गाए जाते हैं, और रश्मि बेटी इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है, सही सलामत आ रही है, तो उसके लिए हमें ये मंगल गीत गाने ही है ना। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, रौनक थोड़े कन्फ्यूजन में बोला था, पता नहीं ये मंगल गीत मैंने पहले क्यों नहीं सुने, मुझे तो सिर्फ नॉर्मल गाने ही आते हैं। ये सुनकर नानी माँ मुस्कुरा दी और बोली, अरे बेटा, चिंता मत करो, हम तुम्हें सब सिखा देंगे। तभी रौनक ने फिर मासूमियत से पूछा, लेकिन जब प्रिंसेस और अंश आया था तब आपने ये मंगल गीत क्यों नहीं गाए थे? तभी नानी माँ की आंखें हल्की सी नम हो गई और उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, उस वक्त हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था, सीमा है ना हमारे साथ, और फिर ये बात हमारे दिमाग से निकल गई थी, लेकिन अब रश्मि बेटी के लिए हम जरूर गाएंगे। अब तुम परेशान मत होइए, बोलकर नानी माँ ने जल्दी से माहौल हल्का कर दिया। तभी रौनक जल्दी से बोली, अरे नानी माँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी तक आहान के साथ सुमित ढोल वालों को वहां खड़ा कर चुके थे और लगातार ध्रुव, आहान सब थिरकने लगे थे। रौनक और आहान बेहद एंजॉय कर रहे थे, बीच बीच में वो ध्रुव और वंशिका को भी खींच लेते थे ढोल पर भांगड़ा करने के लिए। वहीं दादाजी और अभिमान जी मुस्कुराहट के साथ सारे दृश्य देख रहे थे और वहीं अभिमान जी तो दादाजी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए थे। आखिरकार अपने पिता के बिना उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा वक्त गुजारा था और शायद यही एक कारण था कि वसुंधरा की वजह से जो अपने रिश्तों के साथ वो वक्त नहीं दे पाए थे, उनके साथ समय नहीं बिता पाए थे, इसी वजह से शायद वसुंधरा को ठीक तरीके से माफ तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज आस्था ने जिस तरीके से उन्हें समझाया था तो कहीं ना कहीं अभिमान जी का दिल काफी हल्का फुल्का सा हो गया था। लेकिन एक कसर अभी बाकी थी जिसे वो पूरी तरह से तोड़ना चाहते थे। वहीं दादाजी अभिमान जी के चेहरे को देखकर बोले थे, हम तुम्हारे चेहरे से जानते हैं कि इस वक्त तुम वसुंधरा के बारे में ही सोच रहे हो। देखो बेटा, हमारी तरफ से तो तुम्हें पूरी तरह से फ्री हैंड है। तुम्हारा जब दिल जाए तुम जाकर उसे लेकर आ सकते हो, और तुम चाहो तो हम सबके साथ मिलकर एक बार फिर से तुम्हारी शादी वसुंधरा से करवा सकते हो। और वैसे भी जब वसुंधरा तुम्हें मरा हुआ समझकर छोड़कर गई थी, उस वक्त भी वो तुम्हारी पत्नी थी। और अमरेश राय से उसने शादी की या नहीं इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अभी भी वो तुम्हारी पत्नी ही है। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक बार फिर से हम तुम्हारी उससे शादी भी करवा सकते हैं। दादाजी ने जैसे ही हल्के फुल्के खुशी के माहौल में इस तरह की बातें की, अभिमान जी ने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा था, अभी वक्त नहीं आया है पिताजी, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं अब आहान आगे बढ़कर दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें भी डांस करने के लिए खींच लाया था, और दादाजी केवल आंखें दिखाकर रह गए थे। लेकिन वहां कौन मानने वाला था, अब तो दादाजी ने भी अपनी दो उंगलियां उठाकर हल्का सा डांस कर ही दिया था, तब जाकर उसकी शरारत पूरी हुई थी। दादाजी का हल्का सा डांस देखकर हंसी की फुहार चारों तरफ गूंज उठी थी। प्रियंका भी हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाने की लगातार कोशिश कर रही थी, और मनोज तो अपनी बेटी के चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट देखकर ही काफी खुश हो गए थे। रश्मि, उसका छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी, आकाश और साथ ही साथ आस्था और अरमान सभी एक साथ आने वाले थे, तो उसी के मुताबिक सारी तैयारी की गई थी।
प्रिंस ने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। गोल मटोल खूबसूरत सा बच्चा जिसे देखकर किसी का भी दिल उस पर आ जाए। उसे गोद में लेने से कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो सबके साथ खेल रहा था, और जैसे ही ढोल बजते तो उसके हाथ अपने आप ही उठ जाते और वो बैठे बैठे ही में डांस करना शुरू कर देता। इस मूवमेंट पर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। हालांकि मनोज जी के दिल में एक अजीब सी उलझन थी, लेकिन फिर भी वे अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सबकी खुशी में शामिल हो रहे थे। तभी अविनाश और एंजल भी अपने सारे गिफ्ट्स और खिलौनों के साथ वहां आ गए थे, और एंजल ने आते ही अंश को अपनी गोद में ले लिया था और उसके साथ खेलने लगी थी, क्योंकि जैसे ही ढोल बजता वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर डांस करने लगता था, जो बहुत ही प्यारा और क्यूट लग रहा था। उसके दो छोटे छोटे दांत भी निकल आए थे जो उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। फिलहाल अब एंजल और अविनाश भी सारी बातों को भूलकर इस खुशी में पूरी तरह से शामिल हो गए थे, लेकिन इस बात से बेखबर कि इन खुशियों पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है। फिलहाल जल्दी ही आस्था और अरमान एम्बुलेंस के ठीक पीछे पीछे रश्मि और छोटे से न्यूबॉर्न बेबी के साथ सिंघानिया मेंशन के एंट्री गेट पर पहुंच चुके थे। एंट्री गेट पर पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत होने लगा था। रश्मि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी, साथ ही साथ उसकी आंखों में नमी भी थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका परिवार इतनी खुशी के साथ उसका स्वागत करेगा। वहीं आकाश भी रश्मि के चेहरे की खुशी देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। नन्ही सी जान को गोद में लिए रश्मि को ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया उसकी बाहों में सिमट आई हो। नानी माँ ने जल्दी ही आरती की थाल सजाकर उनका स्वागत शुरू कर दिया था। मंगल गीत, ढोल नगाड़ों और खुशियों के बीच बड़ी ही खूबसूरत तरीके से उनकी एंट्री कराई जा रही थी। ये सब देखकर हर कोई बेहद खुश था। धीरे धीरे सब लोग सिंघानिया मेंशन के बड़े से गार्डन को पार करते हुए अंदर एंट्री लेने लगे थे, और जैसे ही वे अंदर पहुंचे दादाजी ने रश्मि की नज़र उतारकर नोटों की गड्डी नौकरों में बांट दी ताकि किसी की भी बुरी नज़र ना लगे। रश्मि काफ़ी खुश थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे व्हील चेयर पर ही अंदर लाया गया था। तभी वंशिका ने रश्मि को देखते हुए कहा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, रश्मि दीदी को तुरंत मिनी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ज़्यादा देर बैठ सकें या खड़ी रह सकें। ये सुनते ही सभी ने तुरंत सहमति दी, और स्वागत के बाद रश्मि को मिनी हॉस्पिटल के कम्फर्टेबल बेड पर लिटा दिया गया। छोटे से बच्चे को भी उसके पास ही सुला दिया गया। नानी माँ ने प्यार से कहा, छोटे से बच्चे को इस वक्त माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। इन सबके बीच नानी माँ ने अरमान को आवाज़ दी और बोली, दामाद जी, एक काम करो, तुम और आस्था दोनों दरवाजे पर आ जाओ, मैं तुम दोनों की भी नज़र उतारना चाहती हूँ। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने तुरंत पीछे मुड़कर आस्था की ओर देखा, लेकिन आस्था वहाँ नहीं थी। अब अरमान के माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। उसने जल्दी जल्दी चारों तरफ नज़र दौड़ाई, आस्था को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी आस्था दिखाई नहीं दी। अचानक अरमान जोर से दहाड़ा, आस्था! जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, वहां मौजूद सभी लोग, जो अभी तक खुशियों में डूबे हुए थे, कोई डांस कर रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, एकदम से खामोश हो गए। अविनाश तुरंत दौड़कर अरमान के पास आया और घबराकर बोला, क्या हुआ अरमान, तुम इस तरह से क्यों चिल्लाए, क्या हुआ, आस्था कहाँ है? जैसे ही ये सवाल उठा, सभी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, लेकिन आस्था कहीं नजर नहीं आई। एक ही पल में खुशियों का माहौल डर में बदल गया था। अरमान एक बार चिल्लाने के बाद पूरी तरह खामोश हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। पूरे घर में आस्था, जो अभी कुछ ही देर पहले सबके साथ हंसते हुए मेंशन में एंट्री कर रही थी, अचानक गायब हो चुकी थी। सबकी सांसें जैसे हलक में अटक गई थीं। वहीं वंशिका और रौनक, जो पूरी एंट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अब कांपते हुए उस कैमरे को देखने लगे, मानो उसमें इस रहस्य का कोई सुराग मिल जाए। आखिर कहाँ है आस्था, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर तेरे इश्क में।